मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी। कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए हैं। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है कालिदास और फिर कहता है, स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। और आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मिले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छिला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों की एक महाकाव्य की। ग्रंथ रख देता है कालिदास। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है। परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के गुनगुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उससे जाते देखता है। कालिदास कहता है, मल्लिका। मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। कालिदास कहता है, किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है मल्लिका। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है और कहता है, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है, वस्त्र कीचड़ से लथपथ हैं, वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम कहता है, भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो। परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि। कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। विलोम फिर कहता है, न जाने आँखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास फिर कहता है, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। विलोम कहता है, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है, तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझसे घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं? नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं, फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि जब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यहीं हुई है। परंतु सच मानो, यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते, हमारी भेंट यहीं होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है और फिर कहता है, तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिन शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिन शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका के बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिन शावक से कम सुंदर नहीं हैं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है और कहती है, आर विलोम। विलोम हंसता है और कहता है, तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्चे की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है? या मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे? कालिदास, यहां से चले जाओ। विलोम, विलोम, चला जाओ इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास कहता है, मैं कह रहा हूं इस समय यहां से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहां लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। हंसता है विलोम। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय है, नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है और फिर हंसते हुए कहता है, तुम चाहते हो इस समय मैं यहां से चला जाऊं। मैं चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहां अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है विलोम। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है और कहता है, देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं? अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका पूछती है, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है, कहता है, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिन शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है और कहती है, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास कहता है, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी ही हैं। मल्लिका पूछती है, और? कालिदास कहता है, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहाँ से ग्रंथ उठा लेता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका कहती है, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अथ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता है और कहता है, मैंने कहा था कि मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मल्लिका पूछती है, क्योंकि? फिर अंदर से बच्चे के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास फिर कहता है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहाँ रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से हटाए अंदर आती है और कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका चिल्लाती है, कालिदास! उसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है और फिर कह चिल्लाती है, कालिदास! पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। इसी के साथ नाटक समाप्त होता है। परिशिष्ट मोहन राकेश एक युगांतकारी नाटक है। इनके ऊपर मूल्यांकन है अनेक रंग कर्मियों तथा आलोचकों के विचार, नाटकों का मंचन आदि, समीक्षात्मक विश्लेषण, नेमी चंद्र जैन का आलेख। मोहन राकेश एक युगांतकारी नाटककार हैं। मोहन राकेश ने अनेक नाटकों की रचना की है, जिनमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन आदि है। इन नाटकों की विशेषता यह है कि पाठकों उन्हें पढ़कर आनंदित तो होता ही है, परंतु रंगमंच पर इनका प्रदर्शन देखकर नाटककार की रचना धार्मिकता से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। किसी नाटक की यह विशेषता होती है कि वह रंगमंच के योग्य हो और उस पर खरा उतरे। इस दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन श्रेष्ठतम सिद्ध हुआ है। पैराग्राफ चेंज। राकेश जी के नाटक भारत के अनेक महत्वपूर्ण नगरों में तो मंचित हुए ही हैं, उनका मंचन अंग्रेजी माध्यम से विदेशों में भी हुआ है और सभी स्थानों पर इनका रंगमंचीय प्रदर्शन काफी सराहा गया है। पैराग्राफ चेंज। मोहन राकेश ने अपने नाटकों के मूल कथन, कालबोध, बिंबों और ऐतिहासिकता के माध्यम से प्राचीन काल की प्रशंसा की बजाय वर्तमान समस्याओं को उठाने का, उन्हें उजागर करने का प्रयत्न किया और इस बात की भी सभी विद्वानों, स्वयं रंगकर्मियों, निर्देशकों, अभिनेताओं और समीक्षकों ने प्रशंसा की है। इनमें विशेष रूप से नेमी चंद्र जैन, अलकाजी, राम गोपाल, कीर्ति जैन, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, सत्यदेव दुबे, कलकत्ता की प्रतिमा अग्रवाल, गिरीश रस्तोगी, सुधा शिवपुरी, कन्हैया लाल नंदन, ओम शिवपुरी, त्रिपुरारी शर्मा, इब्राहिम अलकाजी, सुशील चौधरी, अम्माल अल्लाना तथा अन्य अनेक रंगमंच से संबंधित व्यक्ति और विद्वान समीक्षक आते हैं। पैराग्राफ चेंज। मोहन राकेश के लिखे नाटकों को पढ़कर और उनका मंचन देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कथात्मक और नाट्य विधा दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। दोनों विधाओं पर उनकी गहरी पकड़ है। वे कहीं भी कथात्मकता के चक्कर में नाट्य विधा को पीछे नहीं छोड़ते। उन्होंने दोनों का समान निर्वाह किया है। पैराग्राफ चेंज। संभवतः मोहन राकेश को अपनी संक्षिप्त जीवन काल में जो ख्याति प्राप्त हुई उसका कारण उनके नाटक ही थे, जिसके कारण वे एक युगांतकारी नाटककार सिद्ध हुए। संभवतः ऐसा सौभाग्य अन्य नाटककारों को प्राप्त नहीं हो सका। इनके नाटकों से कथा साहित्य में एक नवीनता के दर्शन हुए और हिंदी रंगमंच के विकास में भारी सहायता मिली। नाटककार के रूप में मोहन राकेश को ख्याति इसलिए भी प्राप्त हुई कि वे अपने नाटकों को के मंचन से संबंधित सभी बातों का विवरण देते थे। यह बात उनकी डायरी के पन्नों से स्पष्ट होती है। इन बातों से रचना धर्मिता के प्रति उनकी समर्पण भावना का पता चलता है। कहानीकार के रूप में मोहन राकेश। मोहन राकेश ने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। अपनी कहानियों के संबंध में वे स्वयं कहते हैं, नए दौर की मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणाओं को अकेलेपन से झेलते हुए लोगों की कहानियाँ हैं। यह अकेलापन समाज से कटकर रहने का अकेलापन नहीं, वरन समाज के बीच में होने का अकेलापन है। उन्होंने अपनी कथा और नाट्य साहित्य में व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक यंत्रणाओं को उजागर करने का यत्न किया है। राकेश जी की एक विशेषता यह थी कि वे सदा डायरी लिखते थे। अनेक लेखक डायरी नहीं लिखते क्योंकि उसमें जीवन की सही और सच्ची बात लिखना कठिन होता है। मोहन राकेश की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी डायरी में बड़ी बेबाकी से, बड़े खुलेपन से अपने संबंध में भी लिखा है। इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं के अतिरिक्त अपने आसपास की जिंदगी, अपने मित्रों जिनमें महिला मित्र भी हैं, पर बड़ी स्पष्टता के साथ सभी कुछ लिखा है। इसके अतिरिक्त भला यह कैसे संभव था कि वह अपने लेखन और लेखन से संबंधित गतिविधियों के संबंध में नहीं लिखते। मज़ा यही है कि उन्होंने अपने जीवन की घटनाएं लिखते हुए अपने आप को भी नहीं बख्शा। मोहन राकेश का जीवन मुख्यतः तीन स्थानों पर बीता था, जालंधर, दिल्ली और बंबई। जालंधर प्रवास उनके प्रारंभिक निर्माण और विकास के काल से जुड़ा है। दिल्ली और बंबई लेखक के रूप में स्थापित हो जाने के बाद उपलब्धियों का काल था। पैराग्राफ चेंज। राकेश जी का जन्म अमृतसर की एक तंग सी गली के एक छोटे से घर में हुआ था, परंतु इस छोटे से घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने सारे भारत को अपना घर बना लिया और भारत के अनेक भागों में घूमा, गया और विचरा। अमृतसर में उनके छोटे से तंग से घर के पास एक और घर था जिसका आंगन खुला था। अड़ोस पड़ोस के बच्चे वहाँ खेलते, राकेश भी उनमें होते, परंतु इन दो चार बच्चों के साथ बचपन में खेलने वाले राकेश ने भारत के खुले आंगन में अपने समय के प्रायः सभी लेखकों के साथ दिन बिताए, शामें बिताई और साहित्य के विशाल आंगन में खेला। राकेश जी ने अपने जीवन का कुछ समय कॉलेज के अध्यापक के रूप में बिताया और तभी लिखना भी आरंभ किया। उनकी कुछ पुस्तकें काफ़ी चर्चित रहीं, जिनमें उनके नाटकों के अतिरिक्त उनकी डायरी भी है। इस डायरी का संबंध अनेक स्थानों की घटनाओं और व्यक्तियों से है। इसी दौरान उनका लेखन भी चलता रहा और लेखक राकेश जीवन की, मन की, मित्रों की, और अपने खुलेपन की अनेक समस्याओं से जूझता रहा। एक के बाद दूसरे अनेक पड़ावों से गुजरती हुई राकेश जी की यह साहित्यिक यात्रा आधुनिक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज वे हम में नहीं हैं, पर राकेश अपने पीछे जो कथा और नाटक साहित्य छोड़ गए हैं, उसके कारण उनका महत्व, उनकी याद चिरकाल तक बनी रहेगी।